थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यूहन्ना हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभुष्य के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रिय परिवार और मित्रों के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी सहायता के लिए बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं जो बाइबल की अंतिम पुस्तक है। तो इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और मधुर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से मनन चिंतन करते हैं, सीखते हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो अलग अलग स्थानों पर रेडियो के निकट बैठे हैं ताकि आपके वचन को सुने, विनती है प्रभु आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि हर एक जब आपके वचन को सुने तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए, उनके जीवन में कार्य करने पाए। इसी के साथ हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो अपने जीवन में निराश हैं, परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, व्यक्तिगत रीति से, पारिवारिक रीति से। पिताजी आप उन पर दया दृष्टि करें, अपनी शांति उनके जीवन में ऊँडे लें, आपका वचन उनके जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए ताकि प्रभु वे निराश ना हो परंतु आप में बढ़ने पाए, बलवंत होने पाए। आज के वचन के द्वारा भी हम सब से बोले और बातचीत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय और उसके 9 से लेकर के 14 पद तक का अध्ययन आज हम करेंगे। पिछले अध्ययन में हम सब देख रहे थे कि प्रभु यीशु ने एशिया माइनर की 7 कलीसियाओं को अलग अलग संदेश दिया जिन्हें यूहन्ना ने अपने दर्शन में सुनकर लिखा। हम देख रहे थे कि फिलाडेल्फिया की कलीसिया से उसने एक भी शिकायत नहीं की क्योंकि वह एक सेवा देने वाली कलीसिया थी जो परमेश्वर के वचन के शिक्षाओं पर अटल थी और प्रभु यीशु को परमेश्वर मानती थी। इतिहास में हम देखते हैं कि उन 7 कलीसियाओं में यही एक कलीसिया थी जो 13वीं शताब्दी तक बनी रही। प्रभु यीशु ने उनकी प्रशंसा में 7 बातें कही हैं और हमने उसे देखा है। आज हम आगे बढ़ते हुए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय उसके 9 पद को पढ़ें। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। मेरे प्रियो, इसराइल के वे शेष जन जो उद्धार पा रहे थे उन्होंने यहूदी आराधनालय की सदस्यता त्याग दी थी। उन्होंने उद्धार और पाप क्षमा के अब व्यवस्था पालन भी त्याग दिए थे। इनमें से जो लोग अब भी यहूदी आराधनालय में जा रहे थे वे मसीही विश्वास में सच्चे नहीं थे। रोमियो के पत्र 9 अध्याय के 6 पद में पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है, कहता है, इसलिए कि जो इसराइल के वंश हैं वे सब इसराइली नहीं हैं। जी हां, वे सच्चे यहूदी नहीं थे। पौलुस सच्चा इसराइली उन्हें कहता है जो प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं। ट्रेंच के अनुसार विंसेंट के विवरण में इग्नेशियस एक तार्किक परिस्थिति का संदर्भ देता है जिसमें यहूदी जिन्होंने कभी विश्वास को तुच्छ जाना था उसी विश्वास का प्रचार करते थे। प्रसंगवश रोमी साम्राज्य विभिन्न स्थानों में बस्तियां बसाने के लिए यहूदियों के समुदाय को भेज दिया करता था और यही कारण था कि फिलाडेल्फिया में यहूदी लोग थे। अब हम यहां पर 6वीं बात को देखेंगे। 7 में से 5 हमने देखा है, अब 6वीं बात देखते हैं। कहता है, देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। प्रभु यीशु कहता है कि वह फिलाडेल्फिया की कलीसिया के बैरियों पर प्रकट कर देगा कि वह इस कलीसिया से प्रेम करता है। यह प्रभु यीशु द्वारा उनकी प्रशंसा का 3रा कारण था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय के 10 पद में लिखा हुआ है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों की परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। 7वीं बात यहां पर लिखा है, उनकी प्रशंसा का 7वां कारण था कि उन्होंने प्रभु यीशु के धीरज के वचन को थामा था। मेरे प्रियो, यह वास्तव में प्रभु यीशु के पुनः आगमन की प्रतीक्षा थी जब वह अपनों को लेने आएगा। 2 थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 अध्याय के 5 पद में हम इसे पाते हैं। पिछली सब शताब्दियों की तुलना में इस वर्तमान शताब्दी में अंत समय की शिक्षा में सबसे अधिक विकास हुआ है। पिछले 65 वर्षों में प्रभु यीशु के पुनः आगमन के विषय में संपूर्ण विश्व में नई रुचि जागी है। यहां तक कि मुक्त विचारक भी कभी कभी प्रभु यीशु के पुनः आगमन की चर्चा करते हैं। यहां पर लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। मेरे प्रियो, मैं यह मानता हूं कि परमेश्वर अपने वचन को ग्रहण न करने वाले संसार के साथ आज धीरज धरे हुए है। आज का युग नूह के युग के निवासियों के समान नहीं है। उनके पास परमेश्वर का लिखित वचन नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। परंतु एक मनुष्य था जो उन तक परमेश्वर का संदेश पहुंचाता था। आज हमारे पास परमेश्वर का वचन है और अंग्रेजी पढ़ने वालों के लिए तो गिडियन संस्था की बाइबलें लगभग हर जगह दिखाई देती है। फिलाडेल्फिया की कलीसिया परमेश्वर के वचन में विश्वास करने वाली कलीसिया थी। आगे कहता है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। प्रभु यीशु अपनी कलीसिया को प्रोत्साहन का अंतिम शब्द जो कहता है वह है कि कलीसिया महाक्लेश में नहीं होगी, कलीसिया इस संसार से उठा ली जाएगी। देखिए 1 थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय उसके 13 से 18 पद में इसके बारे में लिखा है, यह कलीसिया की आशा और सांत्वना है। तीतुस की पत्री 2 अध्याय के 13 पद में लिखा है, कलीसिया का धीरज धरकर प्रतीक्षा करना यही है। इब्रानियों के पत्र 6:12 में लिखा है, जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। कलीसिया महाक्लेश और उसके समस्त दंड की बाट नहीं जोह रही है। आप देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:24 में, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 13:1-8 में, 11-17 में। इसकी अपेक्षा वह प्रभु यीशु के आगमन की प्रतीक्षा में है। तब कहता है, समय जो परखने के लिए है। यह निश्चय ही महाक्लेश के विषय में है जो विश्वव्यापी होगा। 4:5 में प्रारंभिक चर्चा के बाद 6:19 में महाक्लेश के युग का वृतांत दिया गया है। प्रभु यीशु कहता है कि यह समय पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। तब कहता है, मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। जी हाँ, प्रभु यीशु कहता है कि वह अपनी कलीसिया को पृथ्वी पर आने वाले उस भयंकर विनाश से ही नहीं, दंड के उस समय से ही नहीं, परंतु परीक्षा की घड़ी से भी बचाएगा। मेरे विचार में यह संपूर्ण उद्धार है। वह कहता है, उस समय बचा रखूंगा। मैंने इसका अनुवाद किया है, उस समय से अलग रखूंगा। आप कैसी भी कल्पना कर लें, आप यह नहीं कह सकते कि कलीसिया महाक्लेश के समय यहां होगी। मेरा अपना विचार है कि फिलाडेल्फिया की कलीसिया का युग कलीसिया के उठाए जाने तक चलता रहेगा। यह कलीसिया विश्वासियों के संसार से उठाए जाने के समय इस संसार से कूच करेगी। लौदीकिया की कलीसिया, जैसा कि हम देखेंगे, एक संस्था है जो संसार में रहेगी। यद्यपि प्रभु यीशु इसे एक अद्भुत निमंत्रण देता है और अनेक जन लौदीकिया की कलीसिया के सदस्य भी प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे, और जब प्रभु बादलों पर आएगा तब उसके साथ उठा लिए जाएंगे। परंतु एक कलीसिया ऐसी भी होगी जो महाक्लेश में रहेगी। यह विधर्मी कलीसिया है, लौदीकिया की कलीसिया है। अतः हमारे समक्ष यहां जो वचन है वह प्रभु यीशु के आगमन के विषय में है। जब वह अपनों को इस संसार से ले जाने के लिए आएगा और वह फिलाडेल्फिया की कलीसिया से प्रतिज्ञा करता है कि वह इस आने वाले कष्ट के समय में यहां नहीं होगी। मैं डॉक्टर जॉन वॉलवुड्स की पुस्तक से एक और संदर्भ आपको सुनाना चाहता हूं। यदि कलीसिया का उठाया जाना प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में व्यक्त महाक्लेश से पूर्व हो जाता तो उन्हें मुक्ति का आश्वासन दिया गया होता। इसके विपरीत 7:4 में इसराइल के 12 गोत्रों में से चयनित जन जिन पर मुहर लगाई गई है वे कष्टों में रहते हुए स्पष्ट दिखाई देते। अतः कष्ट का समय अर्थात महाक्लेश के युग से पूर्व कलीसिया का उठाया जाना इसमें निहितार्थ रखता है। उन्हें की गई मुक्ति की प्रतिज्ञा स्पष्ट रूप से असंभव हो जाती यदि कलीसिया का उठाया जाना महाक्लेश के अंत में प्रभु यीशु के आगमन और पृथ्वी पर राज्य स्थापित करने तक स्थगित किया जाता। मेरे प्रियो, आगे देखते हैं। प्रभु यीशु कलीसिया से कहता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3:11 में लिखा है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। कहता है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। शीघ्र का अर्थ आगमन की निकटता से नहीं परंतु एकाएक होने से है। यही प्रतिज्ञा कलीसिया की आशा है। कलीसिया महाक्लेश की प्रतीक्षा में नहीं है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि आप महाक्लेश के लिए कमर कस लें, मुट्ठी बांध लें और दांत पीसना आरंभ कर दें, क्योंकि आपका महाक्लेश में होना अवश्य है। इसकी अपेक्षा प्रभु कहता है तीतुस की पत्री 2:13 में, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता अर्थात यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहो। मैं फिर कहता हूं कि फिलाडेल्फिया की कलीसिया नवजागृत कलीसिया का प्रतीक है, कलीसिया जो परमेश्वर के वचन में लौट आई है। यही वह कलीसिया है जो उठाई जाएगी, प्रभु की सच्ची कलीसिया। और मेरे विचार में आप उसे किसी स्थानीय कलीसिया या कलीसियाई वर्ग में नहीं रख सकते। वे आज संपूर्ण संसार में तीतर बीतर हैं और आप उनमें से कुछ को विचित्र संस्थाओं की सदस्यता में देखेंगे जिन्हें मैं नहीं समझ सकता। यह मेरा काम नहीं है कि न्याय करूं, परंतु उन्हें प्रभु के साथ इसे सुलझाना होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3:12 में आगे लिखा है, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। आज फिलाडेल्फिया में 2 खंभे हैं, एक खंभा आराधनालय का है जो मेरे विचार में इस पद से संबंध नहीं रखता है, परंतु पहाड़ के दूसरी ओर एक और खंभा है जो देवदार और सदाबहार के वृक्षों के बीच में छिपा हुआ है। यहोना के युग में इस नगर का एकमात्र अवशेष यही खंभा है। कहता है, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा। यहां की कलीसिया तो नष्ट कर दी गई थी, परंतु चिरस्थाई खंभा स्वर्ग में है। यहां लिखा है, मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। यह विश्वासियों का पासपोर्ट और वीजा है जो उसे स्वर्ग का नागरिक होकर इस पृथ्वी पर वरन परमेश्वर के संपूर्ण जगत में स्वतंत्र विचरण करने के योग्य बनाएगा। मेरे प्रियो, यह खंभा विश्वासी है। कहता है, कभी बाहर ना निकलेगा। यह खंभा कभी बाहर ना निकलेगा, परंतु परमेश्वर द्वारा दिए गए पासपोर्ट से वह सब जगह जाएगा। यद्यपि यह असंगत है, अद्भुत और धन्य रूप में अति सत्य है। लिखा है, अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। हमें नया नाम नहीं, उसका नाम दिया जाएगा। वरन वह कहता है कि उसके पास उसका एक नया नाम है जो वह हमें देगा। यह नया नाम व्यक्तिगत संबंध है जो हम भविष्य में प्रभु यीशु के साथ रखेंगे। प्रकाशित वाक्य 3:13 में आगे लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रभु यीशु के पास इनमें से हर एक कलीसिया के लिए संदेश है। प्रभु का संदेश उन स्थानीय कलीसियाओं के लिए तो था, परंतु आज हमारे लिए भी है। लौदिकिया की कलीसिया को प्रभु यीशु का पत्र, लौदिकिया की कलीसिया को लिखा प्रभु यीशु का यह पत्र इन 7 पत्रों में से अंतिम पत्र है। इतिहासकार सर विलियम रामसे लौदिकिया नगर को समझौते का नगर कहते हैं। यह नगर 261 से 246 ईस्वी पूर्व में एंटियोकस द्वितीय द्वारा बसाया गया था, अतः इसकी नींव यूनानी संस्कृति पर थी। सिकंदर महान के सेनापतियों में से एक सेल्यूकस था, जिसने सिकंदर महान के बाद सीरिया पर अधिकार किया। एशिया माइनर पर अधिकार करने वाला लिसिमेकस था, परंतु सेल्यूकस ने उसके क्षेत्र में से कुछ भाग पर अपना कब्जा किया, जिसमें यह नगर भी था। लौदिकिया इफिसुस से लगभग 60 किलोमीटर भीतरी भूभाग में लाइकस नदी के तीर पर बसा था। लाइकस नदी जाकर भयनदर नदी में मिलती है। यह नगर फ्रुगिया के द्वार पर स्थित है। पूर्व से आने वाले ऊँटों के बड़े बड़े कारवां फ्रुगिया के द्वार और लौदिकिया से आते थे। यह मार्ग पूर्व दिशा से आकर इफिसुस, मिलेतुस और इजबीर अर्थात स्मुर्ना को जाता था। लौदिकिया एक दर्शनीय स्थान था, एक अति उत्तम तराई प्रदेश था। आज यह स्थान और इसके खंडहर जंगली पेड़ पौधों के नीचे दबे हुए हैं। लौदिकिया का अर्थ है मनुष्यों का न्याय। एंतियोकस की पत्नी लौदिकी के नाम पर इस नगर का नाम रखा गया था। यद्यपि इस नाम के अन्य अनेक नगर थे, यह नगर सबसे अधिक प्रसिद्ध था। लौदिकिया और फ्रुगिया के पर्वतों के मध्य तराई में फ्रुगिया के देवता मेनकारू का मंदिर था, जो उस क्षेत्र का पुरातन मंदिर होता था। यह मंदिर सामाजिक, प्रशासनिक, व्यापारिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र था। वहां एक बड़ा बाजार था जहां चारों ओर से लोग आकर क्रय विक्रय किया करते थे। मेरे विचार में इस्तांबुल का अत्याधुनिक बड़ा बाजार इसके जैसा ही है। लौदिकिया धन धान्य से पूर्ण और यूनानी संस्कृति का स्थान था, साथ ही उसमें विज्ञान और साहित्य भी पनप रहा था। वहां का मेडिकल स्कूल उनके गर्व का कारण था, जबकि वह पुराने युग का और बर्बर था। वहां आंखों और कानों के लिए एक विशेष लेप तैयार किया जाता था, जिसे रोगी संसार में फ्रुगिया का चूर्ण कहते थे। लौदिकिया औद्योगिक केंद्र होते हुए व्यापक आर्थिक लेन देन का स्थान भी था। सिसरो ने अपना न्यायालय वहां बनाया हुआ था। कहा जाता है कि वह अपना रुक्का लाकर वह मुनवाता था। वहां के लोग बृहस्पति और ज्यूस की पूजा करते थे। भूकंपों के कारण यह नगर त्याग दिया गया था। वहां रोमी रंगशाला, एक विशाल स्टेडियम और आरंभिक कलिसिया के तीन आराधनालयों के भव्य खंडहर हैं। नगर की खुदाई तो अभी तक नहीं की गई है, परंतु ये खंडहर धरातल पर खड़े हैं, मलबा और वनस्पति के मध्य में। अमेरिका की एक संस्था ने लौदिकिया की खुदाई के लिए लाखों रुपए अलग रखे हुए हैं। लौदिकिया में वस्त्रों का बड़ा व्यापार था। लौदिकिया के खंडहरों में खड़े होकर आप कुलुसे और हीरापोलिस जहां सोते हैं देख सकते हैं। खंडहर में तो लौदिकिया या कुलुसी के नहीं, हीरापोलिस को देखने योग्य भव्य बातें वहां पर पाई जाती हैं। मेरे प्रियो, वहां के पर्वतों का रंग अनोखा है। लोग वहां से मिट्टी लेकर जटामासी के साथ लेप बनाकर आंखों और कानों में लगाते थे। इस लेप का निर्यात संपूर्ण रोम साम्राज्य में किया जाता था। रासायनिक विश्लेषणों से ज्ञात हुआ है कि उसमें रोग हरण वाली कोई बात नहीं थी, परंतु किसी ने इसे धनोपार्जन का साधन बनाया और सफल हुआ। आज भी ऐसा ही है। हम शिक्षित एवं ज्ञानवान हैं, परंतु विज्ञापनों द्वारा भरमाए जाकर उन वस्तुओं को खरीद रहे हैं जो किसी काम की नहीं है। अतः हम उन लोगों की आलोचना न करें, परंतु प्रभु यीशु उनकी आलोचना में कहता है कि वे अपनी आंखें खोलने के लिए सच्चा अंजन लगाएं। मेरे मित्रों, आगे हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3:14 में लिखा है, लौदिकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है। मेरे मित्रों, संपूर्ण धर्मशास्त्र में यहाँ पहली बार आमीन शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात नाम के रूप में उपयोग में लिया गया है। यह प्रभु यीशु का नाम है। हम यदि यशायाह नबी की पुस्तक 65:16 को पढ़ें तो पाएंगे सच्चे परमेश्वर। जी हाँ, सच्चे परमेश्वर के स्थान पर आमीन कहा गया है। यदि हम सच्चे परमेश्वर पर आमीन रखें तो उचित होगा आमीन परमेश्वर का नाम लेकर। जी हाँ, यशाया के पुस्तक 7:9 में विश्वास आमीन है। दूसरा क्रंथियों के पत्र 1:20 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु यीशु आमीन है। अंतिम निर्णय उसी का है। वह अल्फा और ओमेगा है। एकमात्र वही है जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। वह लौदिकिया की कलीसिया को यह बता देना चाहता है, क्योंकि उस कलीसिया ने प्रभु यीशु के ईश्वरत्व को अस्वीकार किया था। अध्याय एक में प्रभु यीशु ने यूहन्ना को जो दर्शन दिया था उसमें केवल आमीन शब्द ही है जिसे वह प्रकट कर रहा है। विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। इसका अर्थ है कि प्रभु यीशु ही है जो सब कुछ प्रकट करेगा और बताएगा। आज सत्य को सुन पाना बहुत कठिन है। आप किस पर विश्वास करेंगे? एक है वह विधर्म के समय में भी विश्वास योग्य एवं सच्चा गवाह है। लिखा है, और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, अर्थात वह सृजनहार है। आज विकासवाद को स्वीकार किया जा रहा है। मेरा एक मित्र कॉलेज के प्राध्यापक हैं। वह कहता है कि इस तथ्य को चाहिए विज्ञान। जी हाँ, इस कारण उसने विकासवाद के सिद्धांत को ही सच समझा है। मैंने उससे कहा, हमारे इस जगत की रचना की दो व्याख्याएं हैं। एक है कल्पना, क्योंकि उस समय का प्रत्यक्ष गवाह कोई नहीं है, अतः इसका उत्तर कोई नहीं दे पाएगा। दूसरा है प्रकाशन, परमेश्वर का वचन जो कहता है, आप में और मुझ में जो अंतर है वह यह है कि आप कल्पना को मानते हैं और मैं प्रकाशन पर विश्वास करता हूं। जहां तक मेरा विचार है, मैं अधिक दृढ़ नींव पर खड़ा हूं, क्योंकि मेरे पास उसकी गवाही है जिसने सृष्टि की, और उसे इस विषय में जानकारी अवश्य होना है। प्रभु यीशु परमेश्वर के सृजन कार्य का आरंभ है। जी हां, वही सृष्टि करता है। मेरे प्रियो, क्या आज आप भी विज्ञान में खोए हुए हैं, विकासवाद में खोए हुए हैं, या उस महान परमेश्वर को आपने पा लिया है जिसने संसार को रचा है, सृष्टि को रचा है, आपको और मुझको रचा है? क्या आप उस नींव पर खड़े हैं या नहीं? मेरे प्रियो, आज यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में कलीसिया के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
सच्चाई पर है जो कोई चलता, अंधेरे से ज्योति में है आता। सच्चाई पर है जो कोई चलता, अंधेरे से ज्योति में है आता। जिसे छुपे ना रहे कारे उसकी है कि ये गए जो उसमें परमेश्वर द्वारा ज्योति आई है। परमेश्वर को जानते हुए बिना महिमा उनको दी। अंधकार से चोर